नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एन के महाजन और आज हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाली बीमारी और उसके उपचार के बारे में। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, और कृपया इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी बताइए।
गर्मियों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है मुर्गी पालन करना, इसलिए आवश्यक होता है कि हम कुछ सावधानियाँ बरतें। जैसे आजकल के मौसम में जब ह्यूमिडिटी या उमस बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो मुर्गों को गर्मियों से बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी है कि हवादार, आपका जो शेड है हवादार होना चाहिए। अगर हवा की व्यवस्था, हवा गर्मी के मौसम में रुक जाती है तो गर्मियों में दोपहर के बाद मुर्गियां बहुत ज़्यादा मरनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि या तो आपके पास पंखों का इंतज़ाम हो, ताकि उनकी हवा मिलती रहे, उनके रुकनी नहीं चाहिए हवा, मतलब चलती रहनी चाहिए या हिलती रहनी चाहिए। अगर हवा रुक जाती है और ख़ासकर दोपहर के बाद में, तो उमस की वजह से मुर्गे एकदम से मरने शुरू हो जाते हैं, और ख़ासकर एक महीने के बाद के जो बड़े मुर्गे हो जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे मुर्गों के लिए हमें एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मियों के मौसम में जब भी हम मुर्गे पालते हैं एक शेड के अंदर, मान लो सर्दियों में हम अगर उसमें 3000 मुर्गे पालते हैं, 3000 स्क्वायर फीट एरिया है हमारे पास, तो गर्मियों के मौसम में हमें उसमें सिर्फ 2000 ही मुर्गे पालने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जगह ज़्यादा चाहिए होती है उनके लिए। गर्मी से बचाव के लिए भी 1.5 स्क्वायर फुट जगह एक मुर्गे के लिए चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरा है कि गर्मी के दिनों में, जैसे अब दोपहर के टाइम में, पानी में इलेक्ट्रोलाइट आप पानी में डालें 1 ग्राम 1 लीटर की मात्रा में, तो उसमें विटामिन सी भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट होती है, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, वो आप डाल सकते हैं। और ज़्यादा गर्मी के टाइम में आप जो उनके फीडर हैं अपने, वो आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा गर्मी, क्योंकि फीड खाने से ज़्यादा गर्मी निकलती है शरीर से, और गर्मी पहले ही ज़्यादा है तो उसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप गर्मियों में इन थोड़ी सी सावधानियों को ज़रूर बरतें, ताकि जो आज के टाइम में समस्या है गर्मियों में, उससे हम मुर्गों को सही पालन कर सकें। इसके अलावा पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सांस की बीमारी हमारे यहाँ मुर्गों में काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो रहा था, और ये बीमारी जो है वो कोई किसी भी उम्र के मुर्गों में आ रही थी, खासकर 2 हफ्ते के बाद से लेके और 40 दिन के बीच में सभी में आ जाती थी, और बहुत 15% से लेके 40% या 50% तक मृत्यु दर हो गया था। लेकिन जब से बारिश हुई है उसके बाद से थोड़ा सा इसमें एक वायरस का प्रकोप होता है, जो एक सूक्ष्म दर्शी से भी हम नहीं देख सकते, विषाणु जिसको बोलते हैं। इसके अलावा उसमें जो माइकोप्लाज्मा नाम का एक कीटाणु है जो मुर्गों के शरीर में ही रहता है, वो एक फैलना शुरू हो जाता है जब उसको वायरस का प्रकोप हो जाता है उनकी सांस के सिस्टम में। और बाद में ईकोलाई का नाम आप सभी जानते हैं कि ईकोलाई का कीटाणु उनके शरीर में आंत में होता है, और वो उससे बीट में निकलता है, और बीट जब कभी पानी में गिर जाती है या बुरादे में होती है, वहाँ से उनके शरीर में चला जाता है। और ये तीनों मिल के, जो वायरस भी होगा उसमें भी, माइकोप्लाज्मा भी होगा और ईकोलाई, ये तीनों जब तीनों कीटाणु मिल जाते हैं, तो जो समस्या बनती है उसको हम आजकल के टाइम में नया नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉम्प्लेक्स या RDC, जो नई बीमारी आज के टाइम में चली है, जिसमें बहुत ज़्यादा सांस की आवाज़ बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा मरने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आपके पिछले बैच में ये समस्या आई है, तो एक तो ये कि जो बैच आपने बाहर निकाला, उसके बाद आपको वहाँ पे जो उनका बुरादा पड़ा है, जो उनकी गंदगी पड़ी है, वो बिल्कुल उसका निपटारा बहुत दूर जाके कहीं करवाना चाहिए। अगर कहीं भट्टे वाले पास हैं तो उनको वो बुरादा भेज दोगे तो वो जल जाएगा और बीमारी भी साथ में साथ नष्ट हो जाएगी। अगर आसपास भट्टे नहीं है तो उनको वहाँ से कम 1-2 किलोमीटर दूर खेतों में कहीं डलवाना पड़ेगा, वहाँ से फार्म से एकदम हटा देना चाहिए। और वहाँ पे उसके बाद आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। खाली शेड में आप फॉर्मलिन की स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप 10% घोल मात्रा बना के, उसकी जो बाज़ार में फॉर्मलिन मिलती है उसका 100 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव कर दें, तो उससे काफ़ी हद तक विषाणु मर जाता है। उसके अलावा उसके बाद आप थोड़ी सी अगर बर्निंग की सुविधा है, जो गैस बर्नर आते हैं उससे बर्निंग कर दें तो और अच्छा हो जाता है। नया बैच लाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसमें एक तो चूजे ऐसे हैचरी से लें जहाँ आपके CRD की समस्या कम है, पहले से आपको मालूम है कि वहाँ पे चूजे अच्छी क्वालिटी के हैं और उसमें समस्या कम आती है। दूसरा ये कि आपके आने से पहले, चूजों के आने से पहले आपके शेड की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अगर आप बुरादा बिछाते हैं तो बुरादे में आजकल समस्या ज़्यादा आती है, उसमें फंगस भी बन जाती है और उसमें धूल उड़ती है जिसकी वजह से उनके सांस की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर बुरादे की बजाय अगर आप छिलका भी छा सकते हैं, जो धान का छिलका होता है शुरू में ब्रूडिंग के टाइम में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके ऊपर अखबार बिछा के तैयार रखिए और जैसे चूजे आते हैं उनको गुड़ का पानी पिला के और उनको उस पर छोड़िए, और उसमें थोड़ा गुड़ के पानी में भी आते ही उनको इलेक्ट्रोलाइट गुड़ के पानी में ही डाल के दीजिए। गुड़ की मात्रा आपको मालूम है, 1 किलोग्राम 1,000 मुर्गों के हिसाब से उसका शरबत बना लीजिए और उसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के वो उसको 4-5 घंटे आने के बाद पहले वही पानी दीजिए और उसके बाद उनको एंटीबायोटिक जैसे एनरोसिन है या नियोडॉक्स है वो उसका 24 घंटे लगातार पानी में, हर बार जब भी पानी बदलोगे तो उसमें वो पानी डाल के, पानी में वो दवाई डाल के देनी पड़ेगी। वो कम से कम 3 से 4 दिन तक लगातार आप उसमें देंगे तो जो माइकोप्लाज्मा नाम का कीटाणु जो शरीर में होता है वो थोड़ा दब जाता है, और उसके साथ साथ आपको उनको एंटी बी कम्प्लेक्स भी साथ में देना होता है, क्योंकि जब भी एंटीबायोटिक देंगे तो उसके साथ बी कम्प्लेक्स देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो काम के कीटाणु होते हैं शरीर में, उनको ख़त्म ना हो जाए और ताकत मुर्गों को मिलती रहे। तो बी कम्प्लेक्स 10 मिलीलीटर की मात्रा में 100 चूजों के हिसाब से एक टाइम के पानी में साथ में लगा दें। और जो ये बीमारी जो मैं बता रहा था, जो RDC बीमारी चली है, इसके बचाव का टीका आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप पहले दिन में लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो किल्ड वैक्सीन है और उसका रिज़ल्ट आने में 10 दिन कम से कम, उसका जो असर आता है चूजे के अंदर कम से कम 10 दिन उसमें लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है जितनी जल्दी आप उसको टीका लगा देंगे उतनी जल्दी उसका असर आएगा और तब बीमारी से बचा जा सकता है। पिछले कुछ समय से जिन जिन किसान भाइयों ने इस टीके का इस्तेमाल किया है उनके यहाँ बीमारी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत कम मॉर्टेलिटी अगले बैच में हुई है। तो जहाँ समस्या पिछली बार बहुत ज़्यादा थी वहाँ 2 टीके लगाने पड़ सकते हैं। पहला टीका जैसे मैंने बताया पहले दिन ही लगा दीजिए, वो किल्ड वैक्सीन है इसलिए वो गर्दन में लगेगा सुई के द्वारा, 1.25 ml 1 ml से 4 बच्चों को चमड़ी के नीचे गर्दन में लगेगा। और इसकी 2-3 कंपनियों की वैक्सीन आती हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वैंकी वालों की जो बोलते हैं वैंकी की आती है, एक वेस्पर कंपनी की आती है, एक इंडोवैक्स कंपनी की आती है, किसी की भी आप टीका इस्तेमाल करिए, मात्रा यही रखिए कि 0.25 ml या 1 ml से 4 बच्चों को गर्दन में चमड़ी के नीचे लगाना पड़ेगा टीके के द्वारा, पानी में पिलाने वाली नहीं है ये। और 10-12 दिन के ऊपर दूसरा टीका दोबारा से अगर इसका लगा देंगे तो फिर समस्या काफ़ी 99% तक कंट्रोल होने की संभावना होती है। और इस बीच में आपको एक थोड़ा स्प्रे वगैरह का, जो विषाणुनाशक दवाएं हैं उनका भी अगर आप स्प्रे करते रहेंगे हफ्ते में 1-2 बार उसकी आदत बना लीजिए, तो उससे जो हवा में वायरस है या कीटाणु कहीं से भी आ सकता है दूसरी जगह से, तो उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। तो आप उसका इस्तेमाल, जैसे आपको मालूम है सेफ गार्ड तो सबसे हल्की है, वो हर जगह उपलब्ध भी है और सस्ती भी है, तो आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml 1 लीटर की मात्रा, 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर वायरस की संभावना ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी तेज़ दवाएं आती है, जैसे B904 है या विरकोन एस है, इन दोनों में से कोई भी एक दवाई आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इन तीनों दवाओं में से कभी कभी आप पानी में पिला भी सकते हैं, इनकी एक उल्टी उसकी जो मात्रा है वो 1 ग्राम 5 लीटर पानी में पीने के लिए, स्प्रे के लिए मैंने बोला था 5 ग्राम 1 लीटर पानी में और पिलाने के लिए 1 ग्राम 5 लीटर पानी में, तो आप 2-3 घंटे के पानी में बीच में कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन पिला सकते हैं। उससे भी जितने भी बीमारियां होने वाले कीटाणु हैं विषाणु हैं उनका प्रकोप मुर्गियों के ऊपर कम होगा। और इसके अलावा जो रानीखेत की वैक्सीन है वो तो बाज़ार में उपलब्ध है, आप पानी के माध्यम से पिला सकते हैं, हम पिलाते भी हैं। जैसे इसके भी कई 2-3 किस्म के टीके आते हैं जिसे हम बोलते हैं पहले जो 5वें दिन पिलाना होता है वह 5वें दिन में पानी में, या अगर आँख में डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है, 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में, तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन अगर आप मुश्किल है आपको हर चूजे को पकड़ना, तो उसमें ज़रूरी है कि आप उनको पानी में पिला सकते हैं, जितने चूजे हैं उतनी मात्रा मिला के, थोड़ा दूध उसमें मिलाना होता है, आपको मालूम है एक ही पानी में जो वम टीका पिलाते हैं उसमें पहले, या तो पाउडर दूध है तो 6 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, अगर घर का दूध है तो जैसे रात को उबाल लिया है ठंडा करके उसका सुबह मलाई हटा के 50 ml 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं, उसके बाद आप उसमें टीका मिलाइए और पानी इतना रखें कि आधा घंटा पहले बर्तन हटा लें ताकि चूजे थोड़े से प्यासे हो जाएं, और आधे पानी इतना लगाएं कि आधे घंटे में सारे चूजे पानी पी जाएं, ताकि ज़्यादा देर पानी पड़ा रहेगा और दवाई उसमें पड़ी है तो कीटाणु उसके जो वायरस है वो जीवित होते हैं, वो आधे घंटे बाद वो गर्मी की वजह से मरने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बर्फ़ वगैरह लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार बर्फ़ अगर बाज़ार से आप लेते हो तो उसमें दवाई मिली होती है जो कीटाणुनाशक होती है, और अगर आप वो बर्फ़ मिलाते हैं तो कई बार कीटाणु जो टीका उसमें पड़ा है वो जो वायरस है वो मर सकता है। इसलिए ये एक दूसरी सावधानी, जब भी आप टीका लेके आते हो तो टीका एक तो जहाँ से लेते हो उसके यहाँ फ्रिज में लाइट रहनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा जितने भी वैक्सीन होते हैं वायरस होते हैं उनको माइनस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है या 4 डिग्री के आसपास रखना पड़ता है, अगर उसके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है बार बार लाइट जाती है तो उससे भी हो सकता है उसका जो आपको टीका लाया है वो मर गया हो। इसलिए और जब आप घर लेके जाओ तब भी उसको थर्मस में लेके जाना है या बर्फ़ में रख के लेके जाना है, और जब तक इस्तेमाल नहीं करो तब तक उसको फ्रिज में रखना है, और पिलाने के टाइम में उसको निकालना है, उसको दवाई जो पानी उसके साथ आता है उसमें मिला के, और पहले जो आपने दूध मिला रखा है उसमें मिला के उसको पिलाना है। ऐसी ही व्यवस्था गंभोरों के टीके के लिए भी आपको करनी होती है, जो 12 या 13 दिन पर आपको लगाना है। तो ब्रायलर में, क्योंकि यहाँ हिसार के आसपास ब्रायलर फार्मिंग ही ज़्यादा है, इसके लिए ये 3 टीके बहुत ज़रूरी हैं। दो तो पानी में पिलाने के हो गए, एक तो रानीखेत का जो F1 का या B1 का टीका है वो 5वें 6ठे दिन पे कभी भी आप पानी में पिला सकते हैं, दूसरा गंभोरों का टीका है जो 12 या 13 दिन पे आपको पानी में पिलाना है, और अगर सांस की समस्या ज़्यादा थी तो आपको किल की वैक्सीन जो मैंने बताई पहले ND वेरिएंट के नाम से या ND किल के नाम से आती है वो आपको चमड़ी के नीचे 0.25 ml लगानी है। तो ये कुल मिला के 3 टीके आवश्यक हैं अगर आपको इन बीमारियों से बचाव करना है अपने इस इलाके में। इसके अलावा जो समस्या, जैसे जैसे मौसम आगे बरसात का आएगा, ज़्यादा बारिश हो, इस बार जल्दी बारिश आ गई, बरसात आ गई है, तो कई बार शेड के अंदर गीलापन हो जाता है, बुरादा गीला हो जाता है, तो उसकी वजह से कॉक्सी की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। कॉक्सी आप जानते हैं, जिसमें उनकी बीठों में खून आने लग जाता है और मुर्गे मरने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी उसकी वजह से और भी कारण हो जाता है कि उसके वजन रुक जाता है, जो वजन बनाना चाहिए मुर्गों को वजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि वजन रुक गया है और कुछ कुछ बीट में खून के कतरे आ रहे हैं या खून आना शुरू हो गया, तो आपको तुरंत उसके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी प्रयोगशाला में लाएं तो हम उसकी सूक्ष्मदर्शी में जांच करके आपको बता देंगे कि इसमें कोक्सीडियोसिस बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है, और आपको जो एम्प्रोलियम की दवा है या डाइकॉक्स की दवा है उसका इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए। जितनी जल्दी आप इस्तेमाल शुरू करोगे उतनी जल्दी उसका इलाज हो पाएगा, अगर लेट कर दोगे तो उसमें इलाज में भी खर्चा भी बहुत आता है और फिर वो इलाज बहुत जल्दी ठीक भी नहीं, मुर्गे जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आप रूटीन में जब भी आपको लगता है कि कॉक्सी आने की संभावना हो सकती है, तो सिंपल जो हल्दी है हमारे जो घर में खाते हैं वो हल्दी फीड में मिला सकते हैं 100 ग्राम क्विंटल की मात्रा में, 3-4 दिन बीच बीच में आप उसका कोर्स करा सकते हैं, उससे भी कोक्सीडियोसिस हल्की अर्ली रूप में आती है तो उसमें रुक जाती है और समस्या नहीं बढ़ती है। इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो हम जो ये बरसात के मौसम में खासकर ये गीलेपन होने के बाद जो समस्या कोक्सीडियोसिस की आती है वो रुक जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां जैसे CRD की है या ईकोलाई की है, वो समस्या भी हर फार्म पे हर किसान भाई ने देखी होगी, वो किस कारण से आती है। जैसे ईकोलाई की हम बात करें तो ईकोलाई हम जानते हैं कि ये कीटाणु उनके हर पक्षी के शरीर में होता है, हर मुर्गे के शरीर में होता है, उसकी आंत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब वो बीट करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर वो बीट पानी में गिर जाती है तो सारे मुर्गे उसको जो पानी पियेंगे तो उससे उनके शरीर में चला जाएगा और वहाँ से उनके शरीर में फिर वो बीमारी करना शुरू कर देता है। ये बहुत मतलबी किस्म का कीटाणु है, जब भी उसको मौका परस्त कह सकते हो, जब इसको मौका लगता है, जब भी चूजों के ऊपर थोड़ी स्ट्रेस पड़ती है वातावरण की या खाने पीने में उसकी कोई किसी चीज़ की कमी है तो उनके ऊपर ये एकदम से अटैक करता है। या जैसे हमने बताया पहले कि वायरस को हो गया या माइकोप्लाज्मा हो गया तो भी इकोलाई उसमें घुस जाता है और सीआरडी बना देता है या आरडीसी बना देता है। इसके अलावा इकोलाई अकेला भी बीमारी कर सकता है। इसकी कई प्रजातियाँ हैं जो अपने आप में सक्षम हैं बीमारी पैदा करने में, जिसको आप इकोलाई के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर्म पे जितने आपके ड्रिंकर हैं पानी वाले, उसमें आपको नियमित रूप से उसकी सफाई करनी चाहिए। उसमें पानी में जो कीटाणुनाशक दवा है, खासकर जो हम इकोलाई को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, हर जगह मिल जाता है, डिक्की से आप जहाँ भी, आदमियों के पानी में भी यही डलता है। 2 ग्राम मात्रा 450 ml 450 लीटर पानी के हिसाब से आप पानी में डाल सकते हैं। या इसके लिए बाज़ार में और भी उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे क्लीन टैब आती है या एंजो टैब आती है, वो एक गोली 500 लीटर पानी के लिए काफ़ी होती है, वो आप डाल सकते हैं। या सेफ गार्ड है, ये भी आप 1 ग्राम 10 लीटर के हिसाब से पानी में डाल सकते हैं। तो इस अगर जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल पानी में करेंगे तो जो ई कोलाई की समस्या है वो हम काफ़ी हद तक उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरे रोग भी उसकी वजह से कम आएंगे, क्योंकि जो पानी में वो पनप नहीं पाते कीटाणु और ये समस्या आगे नहीं फैल पाती। जो सीआरडी बनती है उसमें थोड़ा सा और ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जो तापमान में उतार चढ़ाव है वो ज़्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो मुर्गे हैं वो उतार चढ़ाव को ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। जैसे मतलब दिन आज के टाइम में आजकल आप देखते हो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तापमान 37-40 के आसपास पहुंच जाता है, और रात को अगर बारिश हो जाती है और ठंडी पड़ जाती है तो तापमान 30 या 25 से भी नीचे चला जाता है। तो जब ये इसमें डिफरेंस 10 या 12 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो मुर्गों को मुश्किल हो जाती है, उनको सांस की समस्या बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो उनका शरीर उसको सिस्टम को जो तापमान में जो बढ़ोतरी और उतार चढ़ाव आया है उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसमें ध्यान रखें। अगर ठंड ज़्यादा हो रही है तो एक आध हल्का पर्दा नीचे कर दें, और गर्मी ज़्यादा है तो उसको डाउन करने के लिए पंखों की व्यवस्था रखें, हवा चलती रहे और धूल भी कम उड़े। आने सर्दियों के मौसम में मुर्गों में कई समस्याएँ बढ़ जाती हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। एक तो सबसे पहले कि जो आप चूजे खरीद रहे हैं वो कौन सी हैचरी से हैं, क्योंकि चूजों में जैसे योक की समस्या है वो भी हैचरी से आती है। दूसरा है टाइफाइड की समस्या है वो भी हैचरी से आती है, तो उसको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले हफ्ते में अगर मृत्यु दर बहुत अधिक होता है, अगर आप चूजों को खोल के देखते हैं तो उनके पेट में जो पीले रंग की थैली है जिसको हम योक बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा रुका रह जाता है और वो ख़त्म नहीं होता है। आपने 3-4 बार गुड़ का पानी भी पिलाया होगा लेकिन उसके बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि वो पीछे से इन्फेक्शन आया है अंडों के माध्यम से और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इसलिए आपको एक तो तापमान का सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले हफ्ते में चूजे आने से पहले ही आपके ब्रूडर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर आपके चूजे ठंड में आए हैं, ठंड के मौसम में आए हैं और हवा ठंडी झेल के आए हैं, तो उनको आगे आने वाले समय में सीआरडी की समस्या या सांस की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी आपको तापमान पहले हफ्ते में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर हर हफ्ते आपको 5 डिग्री कम करना होता है, और 70 डिग्री से कम कभी भी नहीं होना चाहिए, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए और 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये उनके लिए जो सबसे अच्छा तापमान होता है इस बीच में रखना होता है। लेकिन पहले 3 हफ्ते में तापमान हमें उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती कि तापमान के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो सर्दियों के मौसम में खासकर पहले 3 हफ्ते उनको तापमान पहले हफ्ते में 95 डिग्री, अगले हफ्ते में 5 डिग्री कम करके 90 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में और फिर 80 से 85 डिग्री के बीच में, ये 3 हफ्ते ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो मैंने बताया सीआरडी की समस्या बढ़ जाती है, सांस की समस्या बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक तो हम अगर आपके यहाँ वायरस की समस्या है तो टीकाकरण पहले दिन में किल वैक्सीन का करना है और 5वें दिन पे रानीखेत का वैक्सीन पिलाना है पानी में, या उसको आँख में करना है F या B1 का, वो टीका जरूर करना है क्योंकि वो समस्या भी सर्दियों में ज़्यादा आ जाती है। और दूसरा ये कि जो पानी भरने की समस्या मुर्गों में बढ़ जाती है, हर कोई जानता है कि जैसे और छोटे चूजे जो रह जाते हैं उनमें पानी भर जाता है, उनके पेट में पानी भर जाता है। आप भी दे सकते हो कि उनके पेट में पीछे पानी भरा हुआ है, और आप खोल के देखोगे तो उनके शरीर से पूरा पेट में पूरा पानी बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह पानी भरा होता है। तो ये सर समस्या भी सर्दियों में खास ज़्यादा होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे भी ऑक्सीजन की कम मात्रा उनको मिलती है, क्योंकि चारों तरफ से आप तापमान को बनाने के लिए चारों तरफ से पॉलीथीन की कपड़ा लगा के ढक के रखते हो, तो ऑक्सीजन नहीं आ पाती अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सर्दियों में तापमान तो बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये व्यवस्था भी करनी है कि उनको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिले। वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। जब तक क्योंकि एक तो आग आपने अंदर भट्टी जला रखी होती है, जिसको बुखार ही बोलते हैं, जब भट्टी जलती है तो उसमें कोयला बुरादा जलता है, और जो आग जलती है तो आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो जो शेड के अंदर की ऑक्सीजन है वो ज़्यादातर तो भट्टियों ने खा ली, और चूजों को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण से ये रोग शुरू हो जाता है पहले दिन से। लेकिन आपको उसकी समस्या नज़र आएगी जब वो 15 दिन के या 20 दिन के हो जाएंगे चूजे, तब वो मरने शुरू होंगे एकदम से, और उनके पेट में पानी भरा हुआ मिलना शुरू होगा आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, कि वेंटिलेशन कुछ ना कुछ 2-3 झरोखे ऊपर से खुले रखें जहाँ से ताज़ी हवा आए, ताकि अंदर उनको ताज़ी हवा मिल सके, और भट्टियाँ जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है वो भी उनको मिल सके। दूसरा ये कि जो गाउट की समस्या एक और आती है, जिसमें आप देखते हो कि चूजे छोटे होकर नींद से करते हैं, पहले हफ्ते में ही समस्या शुरू हो जाती है, और वो जैसे सोए होते हैं और वहीं बैठे बैठे मरने शुरू हो जाते हैं। जब आप उनको चीरफाड़ करके देखते हो तो उनके अंदर जैसे सफ़ेद रंग का चूने जैसा पदार्थ छिड़कर रखा हो शरीर के अंदर, ऐसा जमा हुआ मिलता है, तो वो गाउट की समस्या, उसको हम बोलते हैं गाउट रोग है। वो किस कारण से होता है? उसमें पेशाब शरीर के अंदर जम जाता है, पेशाब बाहर नहीं निकलता चूजों का, और उसकी वजह से उनके मरने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक तो ये कि अगर वो पानी कम पियेंगे तब भी ये समस्या आ सकती है, दूसरा है अगर फीड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तब भी हो सकता है, और तीसरा है कोई ऐसी चीज़ उन्होंने खा ली जो जहरीली हो सकती है, फीड पॉइजन हो सकता है, तो उसके कारण से भी समस्या हो सकती है। या एक वायरस होता है जिसको IBD का वायरस बोलते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी, वो सांस की समस्या करता है, लेकिन कई चूजों में सिर्फ किडनी को डैमेज करता है, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण से जो पेशाब है बाहर नहीं निकलता और वो शरीर में जमा होने लगता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम उनके लिए एक तो नीरी या जो नेफ्रो केयर है या गाउट केयर है, उस तरह की दवा पहले 2-3 दिन उनको पानी में पिलाएं, 5 ml 100 मुर्गों के हिसाब से 2-3 घंटे के पानी में गुड़ के साथ मिला के देंगे, तो जो गुर्दों में पेशाब जम जाता है वो बाहर निकलता रहेगा और जमेगा नहीं। और दूसरा, उनको पानी पीना चाहिए और उसका तापमान आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी का तापमान अगर सही होगा तभी चूजे पी पाएंगे, और उनकी जो ड्रिंकर आपने लगाए हैं उनका लेवल भी सही होना चाहिए, बहुत ऊंचे हो गए और उनका शरीर चोंच वहाँ तक नहीं पहुंच पाती है तो वो भी पानी कम पियेंगे। और मात्रा जो आप ड्रिंकर लगाएं वो 100 चूजों पर एक ड्रिंकर ज़रूर होना चाहिए, और जैसे जैसे चूजे बढ़ते जाएँ फिर वो 3 हफ्ते के बाद आपको 50 चूजों पर एक ड्रिंकर पानी का लगाना पड़ेगा, ताकि वो प्रचुर मात्रा में जितना फीड खाते हैं उससे 2 गुना पानी उनको कम से कम पीना चाहिए। अगर वो 100 किलो फीड खा रहे हैं तो 200 लीटर पानी उनको पीना चाहिए, तब ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा पानी में आप एमिरोन या इंडोरोन जो दवा आती है वो भी पानी में डाल सकते हैं, उससे चूजे थोड़ा मीठा हो जाता है पानी, थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं। या गुड़ का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ज़रूर करें, गुड़ में थोड़ा सिरका डाल दें जो आम बाज़ार में मिलता है, 1 किलो गुड़ 1000 चूजों पर और 5 ml सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से 3-4 घंटे के पानी में अगर आप देंगे तो ये जो पेशाब जमने की समस्या है और गंदगी पेट में जमा हो जाती है वो साफ़ हो जाता है। तो इन सावधानियों को हम अगर बरतते रहेंगे तो जो ये खासकर सर्दियों के मौसम में जो रोग होते हैं इनसे हम बचाव कर सकते हैं। टीकाकरण तो हर एक जैसे रानीखेत का भी करना है, गम्बोरों का भी, ये दो तो जो बहुत ज़रूरी हैं। हर मौसम में ये बीमारियाँ कभी भी मुर्गों में आ सकती हैं। इसी तरह से जो RDC की बीमारी है या वायरस की बीमारी, जो नया वायरस चला है, वो समस्या भी सर्दियों में ज़्यादा आने की संभावना होती है। आपने सुना होगा बर्ड फ्लू की घोषणा ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है, अक्टूबर नवंबर में, वो क्योंकि वो बर्ड फ्लू का वायरस इन्फ्लुएंजा का ही वायरस होता है, वो सर्दियों में जो प्रवासी पक्षी हैं उनके द्वारा दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आने की संभावना होती है। इसलिए ज़रूरी है कि उन दिनों में हम थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखें। आसपास अगर पानी खड़ा हो रहता हो या जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हों तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से पानी के माध्यम से कोई बीमारी हमारे मुर्गी फार्म पे ना आ जाए। लेकिन टीकाकरण जरूर करें, ये सावधानी अगर हम बरतते रहेंगे तो बीमारियों से काफ़ी हद तक हम बच पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारे श्रोताओं को मुर्गी पालन के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को इससे बहुत लाभ हुआ होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।